उत्पत्ति की पुस्तक। शुरुआत में भगवान ने बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी निराकार, शून्य, खाली और अंधकारमय। अब दिन और रात का उजाला अंधेरा समाप्त हो गया। विस्तार, ब्रह्मांड, स्थलीय और नक्षत्रीय। जल और पृथ्वी का विभाजन अब निराकार नहीं, अब सूखी धरती और जीवित प्राणियों के लिए जल की आवश्यकता। वनस्पति, जानवरों और पक्षियों के लिए सभी प्रकार का खाद्य भोजन। विस्तार अलग हो गया, स्थलीय से नक्षत्र। तारे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का वातावरण। जीवित प्राणी, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां और भूमि पर रहने वाले जानवर। मनुष्य भगवान की छवि या समानता में एक प्राणी। ईश्वर प्रेममय है, धर्मी है, दयालु है, शांतिपूर्ण है, सभी भलाई ईश्वर की ओर से है। संकलनकर्ता की टिप्पणी, सृष्टि के आरंभ में समय नहीं था। जैसे ईश्वर शाश्वत है, ऐसा प्रतीत होता है कि समय तब शुरू हुआ जब मनुष्य ने पाप किया और उसे ईडन से निकाल दिया गया। संकलक की टिप्पणी, स्वर्ग है। ए डॉट आकाशीय, ईश्वर और आत्मिक प्राणियों का निवास। बी डॉट नक्षत्र, सौर मंडल जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह शामिल हैं। सी डॉट स्थलीय, वह वातावरण जहां स्वर्ग के पक्षियों का निवास स्थान है। डॉट टिप्पणियां समाप्त करें। भगवान ने कहा कि आइए हम मनुष्य को अपने प्रेम, धर्मी, दयालु, दयालु, शांतिपूर्ण की समानता में बनाएं, न कि हमारे सटीक स्वभाव या सार के अनुसार। उन्होंने पुरुष के लिए एक साथी, महिला भी बनाई। एडम ने उसका नाम ईव रखा। परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर एक विशेष स्थान, अदन, में रखा, जिसे उसने उनके लिए बनाया था। आदम और हव्वा को तीन निर्देश दिए गए थे। ए डॉट भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, नहीं तो मर जाओगे, मेरी बात मानो। बी डॉट ईडन में जमीन जोतना, काम करना। सी डॉट फलदायी बनो और अन्य मनुष्यों की संख्या बढ़ाओ। मनुष्य तर्क करने और समझने में सक्षम था, जैसा कि परमेश्वर के आदेश से प्रमाणित है कि उन्हें अच्छे और बुरे के पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए, और यदि वे ऐसा करते हैं तो वे मर जाएंगे। बाइबल हमें यह नहीं बताती कि वे अपने सृष्टिकर्ता के साथ अपनी धर्मी स्थिति में कितने समय तक रहे, लेकिन किसी बिंदु पर शैतान, एक विद्रोही दिव्य प्राणी, ने उन्हें झूठ बोलकर प्रलोभित किया कि भगवान जानता है कि यदि आप निषिद्ध पेड़ के फल खाएंगे तो आप भगवान के समान बुद्धिमान होंगे। अवज्ञा करने के अपने फैसले के बाद उन्हें अपने कार्यों के परिणाम भुगतने पड़े, जिनमें स्वर्ग से निष्कासन, पुरुष के लिए दर्दनाक काम और महिला के लिए दर्दनाक प्रसव शामिल था। लेकिन भगवान ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने मुक्ति, पुनर्स्थापना और मेलमिलाप की आशा देते हुए कहा कि स्त्री की संतान शैतान को कुचल देगी। स्त्री की संतान यीशु होगी, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और पाप की क्षमा के लिए प्रायश्चित बलिदान। ईडन से निकाले जाने के बाद कैन और हाबिल का जन्म हुआ। जैसे जैसे वे बड़े हुए, वे दोनों परमेश्वर के लिए भेंट ले आए। यह मान लेना उचित है कि वे जानते थे कि ईश्वर क्या चाहता है, या तो माता पिता के निर्देश या कार्रवाई से, या ईश्वर से सीधे। हाबिल की भेंट स्वीकार कर ली गई, परंतु कैन की नहीं। उसकी भेंट को अस्वीकार करने के कारण कैन परमेश्वर से क्रोधित हो गया और उसने अपने भाई को मार डाला। अस्वीकार्य भेंट, क्रोध और हत्या परमेश्वर की छवि नहीं है, वे शैतान, धोखेबाज और झूठे हैं। कैन का परिणाम यह हुआ कि उसकी खेती से फसल नहीं पैदा होगी और वह बेचैन होकर भटकता रहेगा। अत कैन परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चला गया। प्रमुख बिंदु: आदम और हव्वा ने पाप किया, नश्वर बन गए, बहुत पीड़ा सही, दुनिया में शारीरिक और आध्यात्मिक मृत्यु का प्रवेश हुआ। पाप के अप्रिय परिणाम होते हैं। मृत्यु पृथ्वी पर समय लाती है। अनंत काल में कोई समय बाधा नहीं है। भगवान ने क्षमा, मुक्ति और मेलमिलाप की आशा दी। कैन ने अपने कार्यों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन भगवान को दोषी ठहराया। नूह का जन्म आदम की रचना के 1056 वर्ष बाद और आदम की मृत्यु के 126 वर्ष बाद हुआ। उत्पत्ति में कहा गया है कि परमेश्वर के पुत्रों ने पुरुषों की बेटियों से विवाह किया। ईश्वर मनुष्यों की बुराई, हिंसा और दुष्टता से बहुत अप्रसन्न था, यहाँ तक कि उनके विचार भी बुरे थे, लेकिन नूह नहीं। भगवान ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए विशिष्ट और सटीक निर्देश दिए। नूह ने इसे ईश्वर की योजना के अनुसार बनाया और अपने आसपास के लोगों को उनके जीवन के बुरे तरीके से बदलने के लिए ईश्वर का संदेश सुनाया। जानवर और नूह का परिवार अपनी सुरक्षा के जहाज में प्रवेश कर गए। भगवान ने एकमात्र दरवाजा बंद कर दिया, जो दुष्टों के बचने की एकमात्र आशा थी। फिर उसने उन सभी जीवित लोगों को बाढ़ से नष्ट कर दिया जिन्होंने नूह द्वारा घोषित ईश्वर के संदेश को स्वीकार नहीं करना चुना। पृथ्वी की सफाई के बाद नूह ने आवरण हटा दिया, जहाज से बाहर निकला और एक वेदी बनाई और भगवान की पूजा की। ए डॉट संकलक की टिप्पणी, भगवान के पुत्र धर्मी पुरुष प्रतीत होते हैं, जबकि पुरुषों की बेटियां नहीं थीं। टिप्पणियां समाप्त करें। प्रमुख बिंदु: नूह को विशिष्ट आदेश दिए गए थे कि उसे खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। जहाज के निर्माण के दौरान नूह ने दुष्ट लोगों को उनकी दुष्ट जीवन शैली से दूर रहने के लिए परमेश्वर के संदेश की घोषणा की। आदम के विपरीत नूह ने इस प्रकार आज्ञा का पालन किया। आज्ञा मानने के बाद वह और उसका परिवार ईश्वर की कृपा से बच गए। अपने उद्धार के बाद नूह ने परमेश्वर की आराधना की। मसीह ही पापी मनुष्य के लिए क्षमा पाने और बचाए जाने का एकमात्र तरीका है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब्राम का जन्म नूह के जन्म के 900 वर्ष से भी कम समय बाद और जलप्रलय के 352 वर्ष से भी कम समय बाद हुआ था। अब्राम के पिता तेरह अब्राम और सारह के साथ कसदियों के ऊर में अपना घर छोड़कर सामान्य क्षेत्र जहां बाबेल का टॉवर स्थित था और हारान चले गए। यहां परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि वह अपने पिता का घर छोड़ दे, दूर देश में चला जाए और परमेश्वर उसके वंशजों को एक महान राष्ट्र बनाएगा और उसका नाम महान करेगा। अब्राम ने परमेश्वर पर भरोसा किया और यह न जानते हुए भी कि परमेश्वर कहां ले जाएगा, उसकी आज्ञा मानी। जब वह कनान आया तो परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि यह भूमि उसकी संतान को दी जाएगी। कनान में अकाल के परिणामस्वरूप वह मिस्र चला गया, लेकिन कनान लौट आया और उसे भौतिक रूप से बहुत आशीर्वाद मिला। वह और उसका भतीजा लूत इब्राहीम से अलग हो गए और लूत को सबसे उपजाऊ भूमि लेने की अनुमति दी। गॉड कॉल्स अब्राम से मुख्य बिंदु: परमेश्वर ने अब्राम को जाने के लिए बुलाया। अब्राम ने भरोसा किया, आज्ञा मानी और चला गया। परमेश्वर ने उसे महान बनाने का वादा किया और उसके माध्यम से पृथ्वी के सभी लोगों को आशीर्वाद दिया जाएगा, अंततः मसीह के माध्यम से। अब्राम हमेशा सच्चा नहीं था, लेकिन हमेशा भगवान पर भरोसा करता था और उसकी आज्ञा मानता था। लूत ने अपने बारे में सोचते हुए सबसे अच्छी भूमि चुनी, जबकि अब्राम ने सबसे कम वांछनीय जो कुछ बचा था उसे ले लिया। अब्राम के लिए नए नियम का संदर्भ: विश्वास ही से इब्राहीम ने उस समय आज्ञा मानी जब उसे उस स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया जो उसे विरासत में मिलना था, और वह बाहर चला गया, न जाने कहां जा रहा था। विश्वास के द्वारा ही वह प्रतिज्ञा के देश में रहने के लिए चला गया, जैसे कि एक विदेशी भूमि में इसहाक और याकूब के साथ तंबू में रहने लगा जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि वह उस नगर की बाट जोह रहा था जिसने नेव डाली है, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास के द्वारा सारा को गर्भधारण करने की शक्ति प्राप्त हुई, यहां तक कि उसकी उम्र भी अधिक हो गई, क्योंकि वह उस व्यक्ति को विश्वासयोग्य मानती थी जिसने वादा किया था। इसलिए एक ही मनुष्य से, जो मृत के समान था, आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की रेत के असंख्य कणों के समान बहुत से वंशज पैदा हुए। इब्रानियों 11:8-12 से इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी थी और अब कनान में रह रहा था, जिस क्षेत्र को हम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। यह भूमि भूमध्य सागर के बीच थी और शिनार या कसदियों के उर की घाटी से रेगिस्तान द्वारा अलग की गई थी। लूत ने निस्वार्थ भाव से सबसे उपजाऊ भूमि चुनी थी और धीरे धीरे उसे सदोम शहर में लुभाया गया। क्षेत्र के राजाओं ने सदोम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया, उसकी सेना को हरा दिया और लूत को बंदी बना लिया। अब्राम कुछ लोगों को लेकर लूत को बचाने गया। उसने क्षेत्र के राजाओं की सेनाओं को हरा दिया और लूत को उसकी संपत्ति, महिलाओं और बच्चों सहित वापस ले आया। सेलम के राजा और परमेश्वर के पुजारी मलिकिसिदक अब्राम के घर लौटने पर उसके पास गए और उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी परमप्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राम धन्य हो, और धन्य है परमप्रधान परमेश्वर जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया है। अब्राम ने मलिकिसिदक को 10वां हिस्सा या दशमांश दिया, पकड़े गए लोगों को मुक्त कर दिया, उनकी संपत्ति सदोम के राजा को लौटा दी और जीत के लिए भगवान को महिमा दी। मलिकिसिदक को श्रद्धांजलि से मुख्य बिंदु। परमेश्वर के याजक मलिकिसिदक ने अब्राम को परमेश्वर का आशीर्वाद दिया। अब्राम ने जो कुछ उसने युद्ध से लिया था उसका 10वां हिस्सा मलिकिसिदक को दिया। अब्राम ने सदोम की संपत्ति और लोगों को अपने पास रखने से इनकार कर दिया। अब्राम ने अपनी जीत के लिए परमेश्वर को महिमा दी। इसराइल के साथ वाचा से पहले परमेश्वर के पुजारी थे। परमेश्वर ने अब्राम से वादा किया कि उसके और सारे के एक पुत्र होगा जिसके परिणामस्वरूप कई राष्ट्र धन्य होंगे। वे बूढ़े थे और सारे बच्चे पैदा करने की उम्र से बाहर थे। वह परमेश्वर से अपना वादा पूरा करने की प्रतीक्षा में अधीर हो गई। वह और अब्राम सारे की दासी हाजिरा के माध्यम से प्राकृतिक प्रजनन साधनों के माध्यम से एक बेटा पैदा करके भगवान के वादे को पूरा करने में मदद करने के लिए सहमत हुए। हाजिरा के साथ अब्राम के रिश्ते से इश्माएल का जन्म हुआ। परंतु परमेश्वर का वादा हाजिरा से नहीं परंतु सारे से था, इसलिए इश्माएल प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था। 13 साल बाद परमेश्वर ने अब्राम से वादा किया कि यदि वह निर्दोष होकर चलेगा तो वह उसके और उसकी संतानों के साथ एक वाचा बांधेगा और उसे कई राष्ट्रों का पिता बना देगा। परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम, जिसका अर्थ है उच्च पिता, से बदलकर इब्राहिम, जिसका अर्थ है बहुसंख्यकों का पिता, और सारे, जिसका अर्थ है झगड़ालू, से बदलकर सारा, जिसका अर्थ राजकुमारी है, रख दिया। परमेश्वर ने अपना वादा दोहराया कि सारा और इब्राहिम का एक बेटा होगा, वह वादे का बेटा होगा। उत्पत्ति 15:17, गलातियों 1:1-7 में प्रतिज्ञा के पुत्र और स्वाभाविक पुत्र के महत्व पर चर्चा की गई है। ए डॉट संकलक की टिप्पणी, एक संविदा एक बाध्यकारी समझौता है। टिप्पणियां समाप्त करें। इश्माएल से मुख्य बिंदु। सब कुछ भगवान के हाथ में है। मनुष्य के नियंत्रण में रहने के प्रयास से हानि होती है। इब्राहिम ने दिखाया कि वह ईश्वर पर विश्वास करता है और उस विश्वास पर कार्य करता है जिसे धार्मिकता के रूप में श्रेय दिया जाता है। मनुष्य के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद केवल प्रतिज्ञा के पुत्र के माध्यम से ही आ सकता है। इश्माएल लगभग 12 या 13 वर्ष का था और इसहाक अभी भी एक वादा मात्र था। 99 वर्ष की उम्र में और सारा के बच्चे पैदा करने की उम्र पार होने पर परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की और कहा, मैं अपने और तेरे बीच और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी में तेरे वंश के बीच भी युग युग की वाचा बांधूंगा कि मैं तेरे और तेरे वंश के लिए परमेश्वर रहूं आपके बाद। तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाएगा, तुम्हारी खलड़ी का खतना किया जाएगा, और यह मेरे और तुम्हारे बीच वाचा का चिन्ह होगा। तब परमेश्वर ने कहा कि सारा के एक पुत्र होगा। ब्राहिम ने सोचा कि क्या सारा बुढ़ापे में बच्चा पैदा करेगी। फिर उसने कहा, ओह काश कि इश्माएल तुम्हें स्वीकार्य होता। और ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन तुम्हारी पत्नी सारा से तुम्हारे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार एक बेटे का वादा निभाया जाएगा और एक वाचा स्थापित की जाएगी। इब्राहिम के साथ वाचा का मुख्य बिंदु। इब्राहिम ने परमेश्वर के समक्ष धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, सच्चाई, निर्दोष और निष्कलंक जीवन जिया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। खतना की वाचा के कुछ समय बाद ईश्वर एक बार फिर इब्राहिम के सामने प्रकट हुए और उसे बताया कि सारा को एक बच्चा होगा, जिसका वादा बहुत पहले किया गया था। परमेश्वर ने इब्राहिम को उनकी दुष्टता के कारण सदोम और आसपास के शहरों के नागरिकों के प्रति अपने क्रोध के बारे में बताया। वह लोगों और उनकी संपत्ति दोनों को नष्ट करने जा रहा था। अब लूत सदोम में रहता था। इब्राहिम ने शहर को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि उसने लूत और उसके परिवार को हटाने के लिए मानव रूप में स्वर्गदूतों को भेजा। सदोम के पुरुष शहर में आने वाले पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाना चाहते थे। पुरुषों समलैंगिकों के बीच यौन क्रियाएं प्राकृतिक नहीं हैं, जिन्हें ईश्वर बुरा और दुष्ट मानता है। यदि कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ वैसा ही सोए जैसा कोई स्त्री के साथ सोता है, तो उन दोनों ने वह काम किया है जो घृणित है। उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। सदोम और अमोरा से मुख्य बिंदु। परमेश्वर दुष्टता से घृणा करता है। इसहाक के जन्म से पहले इब्राहिम अबीमेलेक देश में गेरार के पास चला गया। परमेश्वर पर भरोसा न करते हुए और अपने जीवन के डर से उसने अबीमेलेक को धोखा दिया कि सारा उसकी पत्नी है, जिसके कारण अबीमेलेक ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, देख, जिस स्त्री को तूने ब्याह लिया है उसके कारण तू मरा हुआ मनुष्य है, क्योंकि वह एक पुरुष की पत्नी है। उसने सारा को इब्राहिम के पास लौटा दिया, जिसने अबीमेलेक की ओर से परमेश्वर से प्रार्थना की। कुछ समय बाद प्रभु ने सारा से मुलाकात की और वह गर्भवती हुई और उसने प्रतिज्ञा के पुत्र इसहाक को जन्म दिया। सारा की दासी हाजिरा को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, परंतु परमेश्वर ने हाजिरा की पुकार सुनी और इश्माएल के साथ रहा। यह वचन के पुत्र इसहाक के माध्यम से है, न कि मनुष्य के स्वभाव के पुत्र इश्माएल के माध्यम से, कि एक और वादा निभाया जाएगा, सभी राष्ट्र धन्य होंगे। वह आशीर्वाद नासरत के यीशु के माध्यम से आएगा, जो सभी भरोसेमंद और आज्ञाकारी लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए स्वयं को प्रायश्चित बलिदान के रूप में पेश करेगा। इसहाक के मुख्य बिंदु। ईश्वर सदैव विश्वासयोग्य है। उनके वादे हमेशा पूरे होते हैं। धोखा झूठ है। जब मनुष्य अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो उनका ईश्वर पर से भरोसा उठ जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसहाक इब्राहिम को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह सारा का एकमात्र बच्चा था और वह बच्चा था जिसका वादा परमेश्वर ने उनसे किया था। इब्राहिम की धार्मिकता और विश्वासयोग्यता ने परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते में छूट नहीं दी। वह इच्छुक था। वास्तव में भगवान ने उसे उस भगवान को खुश करने के लिए अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ाने से रोक दिया था, जिस पर वह प्यार करता था और जिस पर वह भरोसा करता था। यीशु के साथ समानता पर ध्यान दें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता और अद्वितीय पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर भरोसा करे वह सर्वथा नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16-17 से। जब हमारे विश्वास की परीक्षा हो रही है, तो क्या हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं और अपने कार्यों से अपना प्रेम दिखाते हैं? क्या हम जरूरत के समय अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं? क्या हमारा अधिकांश खाली समय स्वयं को प्रसन्न करने में व्यतीत होता है? क्या हम कैंसर होने, नौकरी छूटने या माता पिता या बच्चे की मृत्यु के लिए भगवान को दोषी मानते हैं। इब्राहीम के विश्वास का परीक्षण करने से मुख्य बिंदु। ईश्वर अपने प्रति हमारे प्रेम को हमारे कार्यों से जानता है, हम उसे क्या देते हैं या हम उससे क्या छीनते हैं। इब्राहीम ने इसहाक को नहीं रोका। परमेश्वर ने यीशु को हमारे प्रायश्चित बलिदान के रूप में दिया। इब्राहीम जानता था कि परमेश्वर इसहाक को पुनर्जीवित करने में सक्षम था। अपने समय में इब्राहीम इसहाक के लिए एक पत्नी चुनना चाहता था, कुछ देशों में यह प्रथा अभी भी है। इसलिए इब्राहीम ने अपने सेवक को कसदियों के देश में भेजा, जहां इब्राहीम परमेश्वर के बुलाए जाने से पहले रहता था। वह नहीं चाहता था कि इसहाक की पत्नी कनान के मूर्ति पूजकों में से हो। यहां इब्राहीम के भरोसेमंद सेवक ने भगवान के निर्देश पर अपने भतीजे बथुएल की बेटी रिबका को, जो इब्राहीम के भाई नाहोर का बेटा था, इसहाक की पत्नी के रूप में चुना। इब्राहीम के अंतिम दिनों के मुख्य बिंदु। इसहाक उस व्यक्ति से विवाह करता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, न कि किसी मूर्ति पूजक से। विवाह सहित रिश्ते अनंत काल की हमारी यात्रा में ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को मदद या नुकसान पहुंचाएंगे। इब्राहीम की मृत्यु 175 वर्ष की आयु में हुई और उसे कनान में दफनाया गया। इसहाक और रिबका के जुड़वा बेटे थे। उनमें से प्रत्येक ने पक्षपात किया और इसहाक ने एसाव का पक्ष लिया क्योंकि वह एक बाहरी व्यक्ति था, जबकि रिबका ने याकूब का पक्ष लिया। पक्षपात सदैव कलह का कारण बनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एसाव का रवैया परिणामों या भविष्य की परवाह किए बिना अपनी वर्तमान इच्छाओं को संतुष्ट करने का था। याकूब ने अपनी माँ रिबका के निर्देश पर इसहाक से पहले बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार का दोहरा भाग और आशीर्वाद प्राप्त करने की साजिश रची। वे इसहाक को धोखा देने में सफल रहे क्योंकि वह अंधा था। याकूब अपनी जान के डर से रिबका के परिवार के पास भाग गया। रास्ते में परमेश्वर ने याकूब से कहा, मैं यहोवा तेरे पिता इब्राहीम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू सोएगा उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश पृथ्वी की धूल के समान होगा और तू पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण तक फैल जाएगा, और पृथ्वी के सारे कुल तेरे और तेरे वंश के कारण आशीष पाएंगे। देख, मैं तेरे संग हूँ और जहाँ जहाँ तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और इस देश में तुझे लौटा ले आऊँगा। क्योंकि जब तक मैं अपना वचन पूरा न कर लूँ तब तक मैं तुम्हें न छोड़ूंगा। बाद में जैकब के होने वाले ससुर ने उसे धोखा दिया। पाप का परिणाम हमेशा होता है, भले ही ईश्वर उन लोगों को माफ कर देता है जो उस पर भरोसा करते हैं और उसके प्रति अपने प्रेम के कारण उसका पालन करते हैं। जैकब के धोखे के मुख्य बिंदु। परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा और याकूब से दोहराया कि वह उसके वंशजों को आकाश में तारों के समान असंख्य बना देगा और उन्हें कनान, उनकी वादा की भूमि देगा। याकूब की संतान यीशु के माध्यम से पृथ्वी पर सभी राष्ट्र धन्य होंगे क्योंकि इब्राहीम ने मेरी बात मानी। याकूब ने इसहाक को धोखा दिया, फायदा उठाया और अपने भाई एसाव को क्रोधित किया, इसलिए वह अपनी माँ के घर भाग गया जो कसदियों के देश में था। पहुँचने पर उसने लाबान से, जो उसकी माँ का भाई था और नाहोर का पुत्र और इब्राहीम का भाई, पूछताछ की। पानी के कुएं पर उसने राहेल, एक चरवाहे और लाबान की बेटी को देखा। राहेल को अपनी पत्नी बनाने के लिए जैकब 7 साल तक लाबान के लिए काम करने को तैयार हो गया। 7 वर्ष के बाद लाबान ने याकूब को धोखा दिया और लिया को उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। इसके बाद जैकब राचेल के लिए अगले 7 साल तक काम करने के लिए तैयार हो गया। लाबान के साथ रहने के दौरान परमेश्वर ने उसे बहुत समृद्ध किया। जैकब का मुख्य बिंदु पूर्वी देश में आता है। रिबका और याकूब ने इसहाक को धोखा दिया और अब याकूब को धोखा दिया जा रहा है। ओह, पाप के परिणाम। याकूब की चार पत्नियां जिन्होंने लाबान के साथ रहते हुए उससे कई बच्चे पैदा किए। कम से कम 14 साल बीत चुके थे। लाबान के मन में याकूब के प्रति कम सम्मान होने लगा और लाबान के पुत्रों को याकूब की समृद्धि से ईर्ष्या होने लगी। याकूब के लिए घर लौटने का समय आ गया था, जहां इसहाक रहता था और जहां इब्राहीम को दफनाया गया था। इसलिए याकूब अपने परिवार और मवेशियों के साथ लाबान को बताए बिना चला गया। जब लाबान को याकूब के प्रस्थान के बारे में पता चला तो उसने उनका पीछा किया। रास्ते में परमेश्वर ने लाबान को याकूब के विरुद्ध कुछ भी न करने की चेतावनी दी। लाबान और याकूब मिले और एक दूसरे को हानि न पहुंचाने का समझौता किया। लाबान फिर घर लौट आया। जैसे ही याकूब उस देश के पास पहुंचा जहां एसाव रहता था, उसे डर था कि इसहाक से एसाव का आशीर्वाद प्राप्त करने में उसके पहले धोखे के कारण एसाव क्या कर सकता है। याकूब ने अपनी पिछली बुराई पर पश्चाताप किया, भगवान द्वारा प्रदान की गई समृद्धि के लिए धन्यवाद दिया और एसाव से छुटकारा पाने की याचना की। जब एसाव ने याकूब को देखा तो दौड़कर उसे गले लगा लिया। जैकब फ्लीस लाबान से मुख्य बिंदु। पश्चाताप और भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने से भगवान प्रसन्न हुए। याकूब घर लौट आया है और उसने एसाव के साथ सब कुछ ठीक कर लिया है। फिर वह उस स्थान पर लौट आया जहां भगवान ने उसे दर्शन दिए थे जब वह अपनी जान बचाने के लिए भागा था। परमेश्वर के निर्देश पर वह बेथेल गया, जहां परमेश्वर ने उसे पहले वही वादा दिया जो उसने इब्राहीम और इसहाक को दिया था। जैकब सभी मूर्तियों को हटाने की मांग करके भगवान के करीब आता है। बेतेल में उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर की आराधना की। यहां भगवान फिर से प्रकट हुए और उन्होंने अपना नाम जैकब से बदलकर इज़राइल कर लिया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, फलो फूलो और बढ़ो। तेरे वंश से एक जाति और अन्य जातियों का एक दल उत्पन्न होगा और तेरे ही शरीर से राजा उत्पन्न होंगे। जो भूमि मैंने इब्राहीम और इसहाक को दी वह तुझे भी दूंगा और वह भूमि तेरे पश्चात तेरे वंश को भी दूंगा। मुख्य बिंदु जैकब की बेथेल में वापसी। किसी के कार्यों से पता चलता है कि क्या उसने पश्चाताप किया है। ईश्वर की ओर मुड़ना, झूठे देवताओं को हटाना, धन्यवाद देना और ईश्वर की पूजा करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जैकब वास्तव में बदल गया था, पश्चाताप किया। धन्यवाद, स्तुति और आराधना से ईश्वर प्रसन्न होता है और आनंद मिलता है। याकूब के कनान लौटने और एसाव के साथ शांति स्थापित करने के बाद उनके पिता इसहाक की मृत्यु हो गई। जैकब, जो अब इज़राइल है, के 12 बेटे और एक बेटी थी। दीना नाम की बेटी के साथ कनान देश में एक हिव्वी ने बलात्कार किया था। रिबका बिन्यामीन को जन्म देते समय मर गई। इसराइल ने यूसुफ के प्रति पक्षपात दिखाया क्योंकि वह राहेल का पहलौठा पुत्र था, जिसके लिए उसने 14 वर्ष तक परिश्रम किया। इससे उसके अन्य पुत्रों में बहुत ईर्ष्या होती है। अब यूसुफ को अनोखे सपने आए जो उसने अपने भाइयों और पिता से बताए। इन सपनों ने संकेत दिया कि वे सभी उसके सामने झुकेंगे। यह ईर्ष्या को घृणा में बदल देता है जो तब प्रदर्शित हुई जब उसके भाइयों ने उसे मिस्र जाने वाले इश्माइलियों के एक कारवां को गुलामी के लिए बेच दिया। उन्होंने यूसुफ के लबादे में एक बकरी का वध किया और उसके खून को डुबो दिया, उसे अपने पिता के पास ले गए और उन्हें धोखा दिया कि यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने मार डाला है। जैकब की परेशानी से मुख्य बिंदु। पक्षपात, क्रोध, घृणा और छल आदि पापों का फल और दुर्हक होता है। भगवान ने अपनी महिमा के लिए और याकूब और उसके परिवार को बचाने के लिए और अंततः नासरत के यीशु मसीह के जीवन और प्रायश्चित बलिदान द्वारा मुक्ति के लिए एक भयानक स्थिति का उपयोग किया। यूसुफ के ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे इश्माइलियों के एक कारवां को बेच दिया। मिस्र पहुंचने पर उसे फिरौन के एक अधिकारी को बेच दिया गया। उसने एक भरोसेमंद नौकर के रूप में अपने कर्तव्यों को इस तरह से निभाया कि उसके मालिक ने उसे बड़ी जिम्मेदारियां दीं। चूंकि वह पोतीपर की पत्नी के प्रलोभनों के आगे नहीं झुका, इसलिए उसे कैद कर लिया गया। जेल में भी उसे जेल के रखवाले की कृपा प्राप्त हुई। अपनी सभी प्रतिकूलताओं में वह ईश्वर पर भरोसा करता रहा और उसकी सेवा करता रहा। वहां रहते हुए उसने फिरौन के पिलानेहारे से मित्रता की, जिसे बहुत बाद में याद आया कि यूसुफ ने उसके लिए क्या किया था। जोसेफ द स्लेव के मुख्य बिंदु। सबसे कठिन समय में भगवान के सेवकों को हमेशा धर्मनिष्ठ बने रहना होता है। परमेश्वर उन लोगों के विश्वास की परीक्षा लेता है जो उससे प्रेम करते हैं। विपत्ति के समय कोई ईश्वर को दोष दे सकता है और उससे विमुख हो सकता है। समृद्धि किसी को खुद पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। कठोर और अनुचित समय में भी पाप करने से सदैव बचना चाहिए। धर्मपूर्वक जीवन जीने के परिणाम भुगतते हुए यूसुफ को जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए उसे उन लोगों ने त्याग दिया जिनकी उसने मदद की थी, लेकिन भगवान ने नहीं। भगवान के वफादार सेवक के रूप में रहते हुए उन्होंने भगवान को सभी मानव जाति को मुक्ति दिलाने की अपनी योजना में उनका उपयोग करने की अनुमति दी, यदि वे उस पर भरोसा करते और उसका पालन करते। फिरौन के पिलाने हारे को अंततः यूसुफ की याद आई और उसने फिरौन को यूसुफ के बारे में बताया कि जब वह जेल में था तो उसने उसके सपनों की व्याख्या की थी। फिरौन ने अपने स्वप्न का अर्थ बताने के लिए यूसुफ को बंदीगृह से बुलाया। यूसुफ ने फिरौन से कहा कि वह व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर कर सकता है। फिरौन ने यूसुफ के माध्यम से ईश्वर की व्याख्या पर विश्वास किया और अकाल की आपदा की तैयारी के लिए यूसुफ को प्रभारी बना दिया। यूसुफ अब पूरे मिस्र का दूसरा अधिकारी था और अकाल के लिए तैयार था। कनान में यूसुफ के परिवार में अकाल पहुंच गया। यह सुनकर कि मिस्र में भोजन है, याकूब ने अपने पुत्रों को दो अवसरों पर भोजन खरीदने के लिए वहां भेजा। यूसुफ ने अपने भाइयों से प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि उसने पहचाना कि परमेश्वर का हाथ उसमें भलाई के लिए काम कर रहा है। शासक जोसेफ के मुख्य बिंदु। बहुत पीड़ा और कठिनाई के बावजूद यूसुफ ने परमेश्वर को अपने उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करने की अनुमति दी। ईश्वर हमेशा वफादार रहता है, लेकिन मनुष्य हमेशा समझने में सक्षम नहीं होता है। स्वर्ग में भगवान के साथ एक शाश्वत जीवन हमेशा पृथ्वी पर किसी भी दर्द या किसी भी दिल के दर्द के लायक है। यूसुफ के भाइयों को अकाल के कारण भोजन की तलाश में मिस्र भेजा गया था। अपने जीवन के डर से, क्योंकि उन पर मिस्र के दूसरे सबसे शक्तिशाली देश से चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा था, उन्होंने जोसेफ के सपने को, जो उन्होंने एक युवा के रूप में देखा था, भविष्यवाणी करते हुए उसके सामने झुक गए। यहूदा ने उसे गुलामी में बेचने के अपने अपराध को स्वीकार किया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया कि कैसे उनके विश्वासघाती कृत्य का उपयोग परमेश्वर ने उन्हें और याकूब को बचाने के लिए किया था। यूसुफ ने याकूब और उसके सारे परिवार और संपत्ति को बुलवा भेजा। आगमन पर जोसेफ और जैकब फिर से मिल गए। फिरौन ने याकूब को गोशेन का उत्तम देश दिया। याकूब का इरादा शायद अकाल खत्म होने तक रहने का था, लेकिन उसके वंशज 400 वर्षों तक मिस्र में ही रहे। जैकब गोस टू इजिप्ट के मुख्य बिंदु। परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए याकूब के पुत्रों का उपयोग किया। जोसेफ ने यह कहते हुए अपने जीवन में ईश्वर के हाथ को पहचाना, उसने मुझे तुमसे पहले पृथ्वी पर तुम्हारे लिए एक अवशेष सुरक्षित रखने और एक महान उद्धार द्वारा तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए भेजा था। मिस्र में 17 साल बिताने के बाद जैकब की मृत्यु हो गई। 40 दिनों के दौरान यूसुफ और उसके भाइयों की सुबह का शव लेप करना आवश्यक था। फिर याकूब को कनान वापस ले जाया गया और इब्राहिम, सारा, इसहाक, राहेल और लिया, उसकी पहली पत्नी और यहूदा की मां के साथ दफनाया गया। यूसुफ अपने पिता को दफनाने गया। उसके साथ फिरौन के सब कर्मचारी और उसके घराने के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये और यूसुफ का सारा घराना और उसके भाई और उसके पिता के घराने भी गए। केवल उनके बच्चे, उनकी भेड़ बकरियां और उनके गाय बैल ही गोशेन देश में रह गए। उसके साथ रथ और सवार दोनों गए। यह बहुत बढ़िया कंपनी थी। बहुत बाद में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। तब यूसुफ ने इसराइल के पुत्रों को शपथ खिलाकर कहा, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम मेरी हड्डियां यहाँ से ले जाओगे, कनान जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया। मिस्र में जैकब और जोसेफ की मृत्यु के मुख्य बिंदु। एक गुलाम से लेकर मिस्र के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तक धर्मी जोसेफ ने फिर भी भगवान को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए उसका उपयोग करने की अनुमति दी। यहूदा, जिसने यूसुफ को गुलामी में बेचने का सुझाव दिया था, अब याकूब को पीड़ा से बचाने के लिए खुद को गुलाम के रूप में पेश करता है। लोग बदल सकते हैं। यह दिलचस्प है कि नाज़रेत के यीशु यहूदा जनजाति से हैं।